हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। गुरुवार गौरांग की जय हो गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्ण। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य, आज हमारे बीच में ईस्ट दिल्ली से वहां के कांग्रेगेशन डायरेक्टर हिज ग्रेस विचित्र कृष्ण प्रभु हमारे बीच में, उनका जोरदार कर्तव्य देने से जहां हम स्वागत करेंगे। तो प्रभु जी यहां पर पहली बार जो है हमारे मंदिर आए हैं, आप प्रभु जी के बारे में थोड़ा मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। विचित्र कृष्ण प्रभु जी जो है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, पूर्वी दिल्ली में जो है प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक संगठित प्रचार जो है वहाँ पे उन्होंने किया है। काफी बहुत सुंदर एक नामहट्टा प्रोग्राम है, कई आश्रय ग्रुप्स हैं वहाँ पे उनसे जो है संलग्न हैं, और ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ कांग्रेगेशन प्रीचिंग इन लाइक राधा पार्षदी टेम्पल। और प्रभु जी जो है हाईली क्वालिफाइड है, तो फिर भी जो है अपना सब कुछ जो है अभी भगवान की सेवा में जो उत्सर्ग किया है, और प्रभु जी के साथ हम और स्वागत करना चाहेंगे हर ग्रह श्याम कृपा मां जी का जो हमारे बीच में है यहाँ पे प्रभु जी के भाई है। तो दोनों मिलकर जो है बहुत ही सशक्त प्रचार कर रहे हैं, बहुत सशक्त प्रचारक है और वंडरफुल डिवोटीज। तो हमारा आज सौभाग्य है कि हम उनसे उनके अच्छे मुख से सुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सबसे निवेदन है कि धार प्रभु जी है इस अवसर का लाभ उठाएं और श्रवण करें। धन्यवाद।
हरे कृष्ण। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस विमला प्रसाद प्रभु जी का और हिज ग्रेस रुक्मि कृष्ण प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया मेरे शुद्धिकरण के लिए, आप सबके बीच में आकर श्रीमद् भागवतम के शब्दों को और महान वैष्णवाचार्यों के शब्दों को दोहराने के लिए। हालांकि मेरे से बहुत से वरिष्ठ वैष्णव नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हूं, पर ये आज्ञा प्रदान की गई है मुझे सेवा के लिए, तो कोई अपराध हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और साथ में आप सबकी प्रार्थनाओं और शुभेच्छाओं का कामांक्षी। तो आरंभ करेंगे आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 से। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। प्रोज फॉर्म में तो रिपीट करना है प्रभु जी, कैसे लाइक वर्ड बाय। ओम नमस्ते स्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परम हंस परिव्राज के परमे नात्म योग समाधीना परिभाविता परिस्फुट पारम हंसे धर्मेनो उद्वाटिततम कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभाव भवान। शब्दार्थ तथा अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। ओम हे ईश्वर, नमः, नमस्कार ते आपको, अस्तु हो भगवन। हे श्री भगवान नारायण, समस्त जीवात्माओं के वास नारायण, वासुदेव भगवान, वासुदेव श्री कृष्ण, आदि पुरुष महापुरुष, महापुरुष महाअनुभाव, परम ऐश्वर्यवान, परम मंगल, परम शुभ, परम कल्याण, परम आशीर्वाद, परम कारुणिक, परम करुणामय दयालु, केवल परिवर्तन रहित, जगत आधार, दृश्य जगत के अवलंबन, लोक एक नाथ, समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी, सर्व ईश्वर, परम नियामक, लक्ष्मीनाथ, भाग्य की देवी के पति, परमहंस परिव्राज के, समस्त संसार में भ्रमण करने वाले सर्वोच्च सन्यासी के द्वारा, परमेन अत्यंत आत्मयोग समाधिना, भक्ति योग में मग्न, परिभावित, अत्यंत शुद्ध, परिस्फुट तथा पूर्ण प्रकट, पारमहंस धर्मेन भक्ति की दिव्य विधि को संपन्न करके उद्घाटित, खोला हुआ तमह अज्ञान का कपाट, जिसमें किवाड़ द्वारे, द्वार पर स्थित चित्ते मन में अपावृते कल्मशहीन आत्मलोके आत्मजगत में स्वयं अपने आप उपलब्ध अनुभव करके निज स्वयं के अपने सुख अनुभव, सुख का अनुभव भवान आप। अनुवाद। हे श्री भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णता समाधि मग्न होके सारे विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णता हट जाता है तो आपका साक्षात्कार होता है और उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। अनुवाद रिपीट करना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विभिन्न कोटि के भक्तों तथा दिव्य ज्ञानियों ने अपने अपने श्री भगवान को अपने दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो वो परम ब्रह्म कहलाते हैं। जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो अंतर्यामी कहलाते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो शिरोदक्षाय विष्णु तथा कारणोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में जो विष्णु के उक्त तीनों रूपों से ऊपर हैं अनुभव किया जाता है तो वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार तभी संभव हैं जब कोई पूरी तरह से भक्ति में लगा रहे, तभी हृदय के बंद काट खुलते हैं और श्री भगवान के विविध रूपों का समझा जा सकता है। ओम अज्ञान्तिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सा अग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सहजीवम् सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानिवृतांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। एक बार अनुवाद फिर से पढ़ेंगे। हे श्री भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मीपति के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं। जो भक्ति योग में पूर्णता समाधि मग्न होके सारे विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं, वे अपने ध्यान को आप ही में केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णता हट जाता है तो आपका साक्षात्कार होता है और उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ जिस प्रकार से आप पढ़ते आए हैं कि वृत्तासुर का आविर्भाव अध्याय शीर्षक में, वृत्तासुर के प्रकट होने पर देवी देवता किस प्रकार से भयभीत हो जाते हैं और वो डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जो पोजीशंस हैं वो छिन ना जाएं उनसे। वो भयभीत हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वृत्तासुर के भयावह आकार और उनके रूप को देखते हुए। तो यहाँ देवी देवता भगवान के अनेक नामों का उच्चारण कर रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात पे महत्व डाल रहे हैं कि भगवान के अनेक नाम हैं और ये उनके अनेक नाम उनके दिव्य गुणों के ऊपर आधारित होते हैं। तो देवी देवता के ऊपर यहाँ पर विपत्ति जब आई है तो इस विपत्ति का सामना वो भगवान का आश्रय लेकर कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के अनेक ये रूप हैं और भगवान का साक्षात्कार अनेक प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये तभी संभव है जब कोई पूर्णता भक्ति में लगा रहे। तो जब तक कोई पूरी तरह से भक्ति में ना लगा रहे तो प्रभुपाद कहते हैं कि हृदय के ये काट ये कटते नहीं हैं जो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अति आवश्यक हैं। हालांकि भगवान का एक नाम भक्त वत्सल भी है कि वो अपने भक्तों के लिए बहुत करुणामय हैं और उनके द्वारा किया गया छोटे से छोटा प्रयास भी उन तक पहुंचने के लिए उसे स्वीकार करते हैं, चाहे उस प्रयत्न में अनेक प्रकार के दोष भी क्यों ना हो। लेकिन भगवान का अगर ये गुण ना हो तो जिस प्रकार से आचार्य बताते हैं कि बहुत कठिन होगा जीव के लिए भक्ति में आ पाना कि अगर वो अवगुणों को देखना आरंभ करें, तो भगवान जो सिर्फ जीव के गुणों की ओर देखते हैं जिसके कारण जीवात्मा भगवान की भक्ति को बड़ी सरलता से स्वीकार कर पाता है। जिस प्रकार से भगवद गीता में हम पढ़ते हैं नेहा विकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अल्प से अल्प की गई प्रगति भी इस मार्ग में हमें हमारे महान भय से रक्षा करने में सामर्थ्य रखती है। तो एक प्रकार से भक्ति में कोई हानि नजर नहीं आती और इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। बाह्य परिस्थितियां छीनी जा सकती हैं लेकिन भक्ति नहीं छीनी जा सकती, चाहे ये अनेक युगों के बाद भी क्यों ना मिलती हो। जिस प्रकार से रामायण में वो प्रसिद्ध प्रसंग आता है जब त्रेता युग में भगवान राम दक्षिण भारत में थे और बाली के साथ उनका बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, और बलि के साथ जब ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ तो भगवान ताल वृक्षों के पीछे से छुप के बाली पर प्रहार कर रहे थे, उनका सहारा ले रहे थे बाली का वध करने के लिए। तो भगवान प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो हैं भगवान के वो कुत्ते के समान होते हैं, हालांकि ये तुलना सुनने में अद्भुत लगती है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं इसके माध्यम से कि जैसे कुत्ता अपने मालिक को, वो उसका मालिक कैसी भी वेशभूषा धारण करके आए तो पहचान लेता है, वो पहचान लेता है कि ये मेरा स्वामी आ गया, चाहे वो कैसा ही मुखौटा लगाकर आए, कैसे ही कपड़े पहनकर आए, अपना रूप कैसा ही बदल डाले, तो कुत्ता जानता है ये मेरा स्वामी है, वो पहचानता नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ते से हमें उसकी वफादारी की गुण सीखने को मिलती है। हालांकि कुत्ता बड़ा निकृष्ट पशु कहा गया है शास्त्रों में, उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान चाहे किसी भी रूप में क्यों ना आए, उन्हें पहचान लेते हैं। तो त्रेता युग में आए थे भगवान राम, और द्वापर युग में वो अब कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं आ जाते हैं, और भगवान आके धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, और अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवद गीता का संदेश पूरी मानव जाति को देकर जाते हैं। अब भगवद गीता भगवान देकर जाते हैं उसके सिद्धांतों को, लेकिन उसे कैसे जीना है ये भी भगवान अपनी आचरी प्रभु जी वेरे सिखाए। कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। कि अब उनके जो अस्त्र हैं वो बदल जाते हैं, वो है हरिनाम संकीर्तन। कलयुग का युग धर्म जो कृष्ण हैं वो चैतन्य, कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। श्री श्री राधिका, राधिका राधा रमन, राधा राधिका रमन जी और कृष्ण बलराम जगन्नाथ सुभद्रा, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की जाए। तो यजंती ही सुमेधशा। तो भगवान कलयुग में खुद आचरण करके दिखाते हैं कि कैसे इन भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन किया जाए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे सन्यास वेश में, तो वो दक्षिण भारत की यात्रा में जब जाते हैं तो दक्षिण भारत में जाकर उन्हें वो सप्तताल वृक्षों के पास जाते हैं। वो सप्तताल वृक्ष जिनका वो आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करते ही वो अदृश्य हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं वृक्ष की योनि से, जिसमें चेतना पूर्णता सुप्त अवस्था में है। मनुष्य चेतना जो कि अंकुरित अवस्था में है, जहां से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन वो सुप्त अवस्था की चेतना वाले जीवों को भी भगवान वैकुंठ भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि जब यही भगवान राम के वेश में त्रेता युग में थे तो इन्हीं सप्तताल वृक्षों के पीछे छुप के उन्होंने बालिका वध किया था। तो भगवान उस सेवा को जो उन्होंने शांत रस में की थी, उसका भी फल उनको दो युगों के बाद प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भी हम सेवा कर रहे हैं, वो भौतिक लोगों की भौतिक सेवाएं, जिनके लिए सेवाएं की जा रही हैं, जो सेवा कर रहा है और जो सेवाएं हैं, ये सब भुला दी जाएंगी, क्योंकि मृत्यु के साथ हमारी सारी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी भौतिक जगत में। वो मृत्यु के साथ हमारे संबंध भी समाप्त हो जाएंगे जिनकी हम सेवाएं कर रहे हैं, वो लोग भी, हम भी, ये देह भी, क्योंकि मृत्यु हमें सब कुछ भुला देती है। अनेक जन्मों का भूले हैं हम सब, तो निश्चित रूप से इस जन्म में की जा रही सेवाएं भी भूल ही जाएंगे। लेकिन जब वो सेवा करने की प्रवृत्ति हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, और भगवान के लिए हम छोटी सी छोटी भी सेवा करते हैं, हालांकि भगवान जिनका नाम आत्म राम है, और तीसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में उनके द्वारा प्राप्त करने योग्य कुछ है ही नहीं, तो जब उनके द्वारा प्राप्त करने योग्य कुछ है ही नहीं इस भौतिक जगत में, तो फिर उन्हें अर्पित भी क्या किया जा सकता है। लेकिन जब सिर्फ जीवात्मा को वो देखते हैं कि इसमें वो सेवा करने की भावना है, उसके प्रेम को वो देखते हैं, तो भगवान उसके वो सेवा के भाव को स्वीकार कर लेते हैं। और जब वो उस सेवा को स्वीकार करते हैं कृष्ण, तो जीव स्वयं प्रसन्न होता है भगवान की सेवा करने से। तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है उनको, हमें आवश्यकता पड़ती है कई चीजों की, इसीलिए हमें सेवा भी चाहिए होती है। लेकिन भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी नीड में नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न होते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा नवजात शिशु है, वो पूरी तरह से अज्ञानता में है, पहचानता ही नहीं मां कौन है, पिता कौन है संबंधी, कहां आया हूं, क्यों आया हूं, कुछ नहीं पता, पूर्णता अज्ञानता का जीवन है। लेकिन मां उसको सेवा कर रही है उसके जन्म से पहले से भी, लेकिन वो बच्चा उसको देखना आरंभ करता है जैसे उसका जन्म होता है कि कोई मुझे देख रहा है, सर्व कर रहा है बार बार, मैं रोता हूं तो मुझे दूध दिया जाता है, मैं कुछ करता हूं तो मुझे आवश्यकता ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों से सुविधा दी जाती है। तो अभी कोई उसे संबंध अनुभव नहीं हो रहा अपनी मां से, लेकिन अचानक वो एक दिन मुस्कुराता है मां को देख के, अभी तक नहीं मुस्कुराता था लेकिन मां को देख के अब वो स्माइल करता है। तो जैसे ही वो मां को देख के मुस्कुराता है तो मां का सेवा करने का उस बच्चे के प्रति उत्साह और बढ़ जाता है, अब मां और उत्साह से उसकी सेवा करती है। तो उसी प्रकार से हालांकि जीवात्मा और भगवान का संबंध शाश्वत है, नित्य है, वो किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि ये जीव अब सेवा करने का प्रयास मात्र ही कर रहा है, यानी कि वो बच्चा मां को देख के अब मुस्कुरा रहा है, तो भगवान का उस जीव के प्रति उत्साह और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी भगवान के प्रति की गई सेवाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहां पर वो प्रेम का संबंध है। जिस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, हालांकि बच्चा पिताजी से ही पैसे लेके पिताजी के जन्मदिवस पे उनको उपहार लाके देता है, लेकिन फिर भी पिताजी इस बात से बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि इस बच्चे के हृदय में मेरे प्रति कितना स्नेह और मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो हम हो सकता है भगवान के प्रति की गई सेवाएं भूल जाएं, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे उसे। हम भूल जाएं कि हमने क्या क्या किया कृष्ण के लिए, याद रखना भी नहीं चाहिए एक भक्त के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, यही याद रखना चाहिए क्या नहीं कर रहे हैं, प्रगतिशील भक्तों का यही लक्षण है, लेकिन भगवान नहीं भूलते। जिस प्रकार से भगवान होते हैं उसी प्रकार से उनके शुद्ध भक्त भी हैं। तो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में बहुत सारी समानताएं देखने में आती हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के जैसी ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी 1966 में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं 26 एवेन्यू में, और प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि फलों का राजा आम होता है, और यह अमेरिका एक ऐसा देश है जहां आम ही नहीं होते। तो जो सबसे सर्वोत्तम पदार्थ है प्रकृति के, वो इस देश में पाए नहीं जाते, और आप इस देश को सबसे उन्नत कहते हो, कहां से उन्नत है ये? तो वहां पर एक व्यक्ति आते थे प्रभुपाद को, स्वामी जी को स्वीकार कर रहे थे, वो उनके अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे थे, उनका नाम था स्टीव। तो स्टीव ने सुनी ये बात कि प्रभुपाद कह रहे हैं आम फलों का राजा होता है, तो वो बाजार में गया ढूंढने की स्वामी जी के लिए आम लेकर आएगा। वो तो स्टोर्स में देखा, कहीं आम नहीं मिले, एक स्टोर के अंदर कोल्ड स्टोरेज में आम थे, अब पता नहीं कितने पुराने थे, कोल्ड स्टोरेज में थे। तो एक आम खरीद के लाया और अगले दिन प्रवचन के बाद स्वामी जी को दिया उपहार में। तो जब दिया प्रभुपाद को वो आम, तो प्रभुपाद कहते हैं गुड बॉय, सब हंसने लग गए, सब जो बैठे थे, क्योंकि प्रभुपाद इस तरह से कह रहे थे जैसे एक पिता छोटे से बच्चे को कहता है वो कुछ लाके देता है तो गुड बॉय। तो जब वो सब हंसने लगे बैठे, तो प्रभुपाद ने बीच में उनको रोक के कहा कि नहीं, इसके पीछे हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रेम है जो ये दे रहा है, ये आम नहीं दे रहा है, ये कृष्ण भावनामृत है, इसके पीछे हमें इसकी भावनाएं देखनी चाहिए। और वो फिर कई दिनों तक प्रभुपाद को रोज एक आम लाके देता था, उसी कोल्ड स्टोरेज से वो पड़े थे कई पुराने, एक एक रोज लाता था और प्रभुपाद जी को देता था। शिला प्रभुपाद जी लंदन में थे, तो सुबक स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत गंभीर बैठे थे, और गंभीर बैठे पता नहीं क्या सोच रहे थे, तो उनकी आंखों से कुछ नमी आने लगी, उनकी आंखों से कुछ अश्रु ऐसा लग रहा था प्रकट हो रहे हैं। तो सुबह स्वामी महाराज कहते हैं, मैंने थोड़ा साहस करके प्रभुपाद जी से पूछा कि आप क्या मेडिटेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, आप क्या सोच रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं मैं सोच रहा हूं अपने दो शिष्यों के बारे में जो कितना त्याग मेरे लिए कर रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं मेरे लिए हांगकांग में, जो सब कुछ त्याग के एक बियाबान क्षेत्र में जहां कोई भक्त का संग नहीं, उनको वो अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, भूरिजन प्रभु और जगतारिणी माता जी। तो भगवान के शुद्ध भक्त भी वैसे ही हैं जैसे भगवान। तो छोटी से छोटी की गई सेवा भगवान भी नहीं भूलते और भगवान के शुद्ध भक्त भी नहीं भूलते हैं। 1977 में प्रभुपाद जी के अपनी भौम लीला समाप्त करने से लगभग दो दिन पहले की बात, प्रभुपाद हैं वो अपने क्वार्टर्स में बेड पे लेते हैं, बाह्य दृष्टि से रुग्ण लगते हैं। तो प्रभुपाद कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं, अपने हाथ की अंगूठी उतार के उनको देते हैं और कहते हैं, प्लीज गिव दिस टू जॉर्ज हैरिसन। ये शरीर त्यागने से दो दिन पहले की बात। और प्रभुपाद उस समय उनकी आंखों में अश्रु थे जिस समय ये वो कह रहे थे, कृतज्ञता के, धन्यवाद के, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने बहुत सहायता की प्रभुपाद को आरंभिक दिनों में, जिस समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन अभी स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। और अब 1977 जिस समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरा विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है, सब लोग जानते हैं उसे, इतने अनुयायी, इतने सब मंदिर और इतना प्रसिद्धि सब हो गया है। और प्रभुपाद उस 1965-66 में की गई सेवा को 1977 में स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जॉर्ज हैरिसन को तुम देना। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त दोनों ही हमारी प्रत्येक प्रकार की सेवा को कभी भुलाते नहीं है। जिस प्रकार से मां उत्साहित होती है बच्चे के मुस्कुराने से, अब वो बच्चा एक बार स्माइल करता है तो मां का उत्साह बढ़ जाता है, दूसरी बार फिर स्माइल करता है, प्रतिदिन स्माइल करने लगता है तो मां बड़ी उत्साहित रहती है उसकी और सेवा करने के लिए। लेकिन अगर वो बच्चा एक साल तक सिर्फ स्माइल ही करता रहे, कुछ बोले नहीं, दो साल तक भी स्माइल करता रहे, तीन साल तक स्माइल करता रहे, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, तो अब मां का उत्साह उतना रहेगा, कम होता जाएगा। तो हालांकि कृष्ण हमारे द्वारा की गई प्रत्येक सेवा की प्रशंसा करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन वो हमसे चाहते क्या है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी या प्रतिहृता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वो हमसे चाहते हैं 100% शरणागति, व्यवसात्मिका ही बुद्धि एकह कुरु नंदना। वो हमसे 100% शरणागति चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है लेकिन इस स्तर पे खड़े ना रहें, इससे आगे बढ़ें। तो इसीलिए साधना भक्ति में हम देखते हैं कि एक साधक के लिए प्रत्येक स्तर पे चुनौती है, अपेक्षाओं की, कृष्ण की अपेक्षाओं की पूर्ति करने की, उसके लिए हमेशा संघर्ष है कृष्ण को शरणागति लेने के लिए, कृष्ण को सरेंडर होने के लिए। जिस तरह से नए लोग आते हैं कृष्ण भावनामृत में तो कहा जाता है आप एक माला का जप कीजिए, थोड़ा पुराने होते हैं तो कहते हैं बढ़ाओ थोड़ा, दो करो, चार करो, आठ करो, फिर 16 पे आ जाते हैं, अब एकादशी भी रखो, रोज प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, नित्य आके भागवतम भी सुनो, सेवा भी करो। तो हर स्तर से एक चुनौती है ना आगे बढ़ने के लिए। अब इसके बाद भी संघर्ष है इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो कृष्ण प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वो हमसे चाहते हैं 100% शरणागति, और वो चाहते हैं कि साधक होने के नाते, एक भक्त जो कृष्ण भावना मृत में प्रगतिशील हैं, हमारा एक ही उद्देश्य हो। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हमारा एक उद्देश्य नहीं होगा कृष्ण को प्राप्त करना, जो कि कृष्ण भावना मृत में प्राप्त करने के लिए हम सब आए हैं और कुछ नहीं, तो यहां प्राप्त करने के योग्य सिर्फ एक ही वस्तु है और वो है स्वयं कृष्ण। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में भी लोग एक उद्देश्य बनाते हैं तभी सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे दुर्योधन, जिस समय महाभारत के युद्ध में भीम ने उनको गदा युद्ध में जंगा पे प्रहार करके गिराया युद्ध स्थल के अंदर। हालांकि वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये भीम कैसे कर सकता है। वो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित थे कि भीम ने ये किया कि उसने युद्ध के नियमों को तोड़ा। उन्हें इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो बिल्कुल मरने के करीब हैं, मृत्यु उनके नजदीक है और अश्वत्थामा उनसे मिलने आते हैं और वो अश्वत्थामा को क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी अभी जीवित है, जाओ तुम उसका संग करो और संतान की उत्पत्ति करो और उस पुत्र को पांडवों के विरुद्ध खड़ा करो, जाओ। तो ये देखिए दुर्योधन का उद्देश्य कितना स्पष्ट है कि आखिरी सांस गिन रहा है लेकिन फिर भी हस्तिनापुर नहीं जाने दूंगा। तो उसी प्रकार से जब हम भक्त इस साधन मार्ग में हैं तो हमें भी उद्देश्य कृष्ण को रखना होगा 100% शरणागति के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम इस भौतिक जगत को आरामदायक बनाने में लगे हैं तब तक कृष्ण हमारा उद्देश्य नहीं हो सकते। जब तक हम यहां की परिस्थितियों को अपने रहने के अनुकूल बनाने में लगे रहेंगे तब तक कृष्ण हमारा उद्देश्य नहीं हो सकते। वो कहा जाता ना कि दोनों पैरों को दोनों नौकाओं में नहीं रखा जा सकता, एक ही नौका में दोनों पैरों को रखना होगा कि अगर हमें उस दिशा में प्रगतिशील होना चाहिए। तो हालांकि भगवान बहुत दयालु भी हैं लेकिन वो बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, उनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। उन्हें अरविंद लोचनम भी कहा जाता है, यानी कमल के समान उनके सदृश उनके अंग हैं और वज्र की भांति भी अंग उनके बताए जाते हैं। तो दोनों ही विरोधाभास भगवान में पाए जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि उत्तम भक्ति जिस प्रकार से अर्जुन भी अनन्य भक्ति कर रहे थे कृष्ण की, जब उन्हें चुनाव दिया जा रहा था कि उनकी ऐश्वर्यशाली नारायणी सेना या फिर स्वयं कृष्ण, तो अर्जुन ने सारे ऐश्वर्य को त्यागा, अर्जुन ने सारी शक्ति सारी संपत्ति को त्यागा और सिर्फ कृष्ण को ही स्वीकार किया। यहां तक कि यह भी चुनाव दिया जाता है कि इंद्र जो हैं अर्जुन के आगे से अपने सारे अस्त्रों के शास्त्र साथ युद्ध करेंगे या फिर कृष्ण उनके पीछे से युद्ध करेंगे, यानी कि उन्हें सलाह देते हुए। तब भी अर्जुन ने इंद्र को नकारा और कृष्ण को ही स्वीकार किया। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, यही उत्तमा भक्ति। अब हम अपने जीवन में सब कुछ तो उत्तम चाहते हैं, गाड़ी उत्तम, घर उत्तम, पत्नी उत्तम, पति उत्तम, बच्चे उत्तम, विद्या उत्तम, वस्त्र उत्तम, पैसा उत्तम, लेकिन भक्ति उत्तम कोई नहीं चाहता। ये कठिनाई है, सब कुछ उत्तम चाहिए भक्ति को छोड़ के। आसक्तियों को त्यागना कष्टप्रद है, इसमें दुख है। अधिकतर लोग आते हैं इसीलिए हैं कि शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं शांति चाहता हूं। तो जहां जब तक मैं नहीं हटेगा तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं और चाहता हूं शब्द जब तक नहीं हटेंगे तब तक शांति प्राप्त की नहीं जा सकती। तो भगवान हमारी आसक्तियों को काटते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वामन देव प्रकट हुए थे और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी और जब वो सब कुछ बलि महाराज का हर लेते हैं और अंत में अपने पाश से बांध लेते हैं बलि महाराज को, तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रार्थना के लिए आते हैं वामन देव के पास, बलि महाराज के एडवोकेट बनकर आते हैं। कोई भी नहीं बोल रहा होता, विंध्यावली उनकी पत्नी भी, कोई भी नहीं, प्रहलाद महाराज भी वहां खड़े हैं, सब देख रहे हैं बलि महाराज को बांधा जा रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि हे भगवान, आप तो एक तुलसी दल मात्रे ना, एक तुलसी दल देने से भी प्रसन्न हो जाते हो, जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूं आप इतने से खुश हो जाते हो और लेकिन यहां पर बलि ने आपको सब कुछ दे दिया फिर भी आप इनको बांध रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पे कि कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि वो ही देने वाले हैं और वो ही लेने वाले हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि हो सकता है हमने अपनी देह को दे दिया हो कृष्ण को, लेकिन अहंकार शायद फिर भी ना दिया हो कि हमने दिया है। तो इसलिए इन जब घटनाओं को हम देखते सुनते पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है ये हमारे साथ तो हो नहीं रहा, बलि जी के साथ हुआ, प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, ध्रुव महाराज के साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। लेकिन हमें क्यों दिए गए ये सब? क्योंकि हम इनसे वो सिद्धांत सीख सकें इन घटनाओं के माध्यम से। तो जब तक सिर्फ बाहे इनको देखेंगे, इन घटनाओं को, इन प्रसंगों को, अगर इनसे प्रिंसिपल्स नहीं सीखेंगे तो फिर ये ज्यादा परिवर्तन नहीं लाने वाला। जिस प्रकार से हंसदूत प्रभु बहुत प्रचार कर रहे थे यूरोप में, और बहुत प्रचार करने के बाद उनको लगा कि अब मैंने बहुत सेवा कर लिया है, अब थोड़ा जाके वृंदावन में रहता हूं, भजन करता हूं, जाके थोड़ा आराम होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा सेवा हो गया, थक गया मैं अब। तो प्रभुपाद उन दिनों वृंदावन में थे, तो उनको देखा वृंदावन में बैठे हंसदूत प्रभु जप कर रहे थे। प्रभुपाद जी उनके पास आए और कहते हैं आप कहां से आ गए, आप तो प्रचार कर रहे थे ना। तो हंसदूत प्रभु कहते हैं मैंने बहुत प्रचार कर लिया प्रभुपाद, मैं वृंदावन में रहकर भजन करना चाहता हूं थोड़ा। तो प्रभुपाद ने कहा गो टू श्रीलंका इमीडिएटली, श्रीलंका जाओ और वहां जाके प्रचार करो। तो हंसदूत प्रभु कहते हैं प्रभुपाद श्रीलंका इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है। तो प्रभुपाद कहते हैं ओके देन गो टू पाकिस्तान। तो हंसदूत प्रभु कहते नहीं ठीक है मैं श्रीलंका ही जाता हूं। तो इस प्रकार से जब इन घटनाओं में हम प्रिंसिपल्स नहीं देखते, सिर्फ बाह्य देखते हैं, जैसे भक्त समाज में आने पे बाह्य परिवेश बदल लेना बड़ा आसान नजर आता है, धोती पहन लेना, कुर्ता पहन लेना, लेकिन क्यों पहन लेना अगर वो प्रिंसिपल नहीं सीखा? क्योंकि ये सरलता के जीवन को हम स्वीकार कर रहे हैं। अब धोती में भी अनेक प्रकार की फैशनेबल धोती, किस स्टाइल से बांधना है, किस स्टाइल से पहनना है, तो प्रिंसिपल स्वीकार नहीं किया, उसे एक्सटर्नली पहन लिया। प्रिंसिपल है सरलता का जीवन, वो नहीं स्वीकार किया। तो अनेक जब तक इन सिद्धांत को इन शिक्षाओं से नहीं लेंगे तो परिस्थितियां सामान्य हमेशा नहीं रहने वाली, अनुकूल नहीं रहने वाली, उन परिस्थितियों में फिर हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब ढाका में थे तो एक बार वो प्रवचन दे रहे थे, सीरीज चल रहा था उनके लेक्चर्स का, तो एक व्यक्ति प्रवचन में खड़ा हुआ और उनसे बड़े चुनौती भरे प्रश्न करने लगा। एक प्रकार से वो पूरी सभा का समय नष्ट कर रहा था, उनका कोई संबंध ही नहीं था उस प्रवचन से, सिर्फ उन्हें दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना जानता हूं और आप ऐसे ऊपर बैठे हैं व्यास आसन में। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसके हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे थे, हर प्रश्न का। अब अनेक शिष्य भी बैठे हैं उनके साथ, वो भी बहुत क्रोधित हो रहे हैं कि क्या ये गुरु महाराज का समय व्यर्थ कर रहा है मूर्ख यहां पे। तो कुछ शिष्य उठे और उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इशारा किया बैठे रहो और उन्हें बिठाए रखा और उनके प्रश्नों के उत्तर, वो प्रतिदिन आता ऐसे क्वेश्चन करता और भक्ति सरस्वती महाराज प्रश्न के उत्तर देते रहते। अनेक अलग एक अन्य स्थान पे कुछ शिष्यों ने आके बताया भक्ति सरस्वती महाराज को कि वो जो था ना, वो व्यक्ति जो चुनौती भरे प्रश्न करता था, पूरे प्रवचन को डिस्टर्ब करता था, वो मर गया। और बड़े खुश थे शिष्य। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस बात को सुन के बड़े व्यथित थे, दुखी थे, और ऐसा बताया गया कि वो रोने भी लगे कि मेरा वेल विशर चला गया, मेरा शुभ चिंतक चला गया। तो वो कहते हैं अपने शिष्यों को कि वो ही था जो मेरी सहायता कर रहा था मुझे विनम्र बने रहने के लिए, मुझे धैर्यशील बने रहने के लिए। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हम इन सिद्धांतों को खो भी देते हैं, और वास्तव में हमारे कितने गुण हैं, कितने गुण विकसित किए हैं, ये पता भी तभी चलता है जब परिस्थितियां ऑपोजिट होंगी। अनुकूल परिस्थितियों में गुणों का पता नहीं चलता, अनुकूल परिस्थिति में विनम्र बना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में विनम्र रहना ये एक बड़ी बात है। और जो ऐसा कर पाए वो बहुत महान व्यक्ति है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जी जब हिप्पियों को पढ़ाते थे तो प्रभुपाद जी के पास हिप्पी बैठे थे, प्रभुपाद ने भागवत गीता में प्रवचन दिया, अंत में एक हिप्पी ने पूछा कल क्या करेंगे, कल कौन सा बोलेंगे। तो क्योंकि भौतिक जगत का मतलब है हर दिन नई बुक होनी चाहिए, हर दिन नया विषय होना चाहिए, तो प्रभुपाद ने भागवत गीता ओनली, कल भी भगवद गीता ही पढ़ेंगे हम, हमारा यही प्रिंसिपल है। प्रभुपाद कहते हैं हम एक श्लोक को तीन महीने पढ़ सकते हैं। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए और कहते हैं प्रभुपाद देर इज नॉट सफिशियंट टू रीड, आप बहुत स्लो लिख रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं कितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में, तो वो शिष्य कहता है 18,000 प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं माय गुरु महाराज स्पोक, मेरे गुरु महाराज ने एक श्लोक के ऊपर 30 दिन बोला था और तुम्हें एक श्लोक समझने में 30 दिन लग जाएगा, एक महीना लग जाएगा। तो कितने महीने लगेंगे तुम्हें सब श्लोक समझने में, तो वो मैथमेटिक्स में तेज था थोड़ा, कहता है 1500 साल प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं देर इज नॉट सफिशियंट टू रीड, पढ़ने के लिए कम है तुम्हारे पास। तो भौतिक जगत का नियम है हमें सब कुछ नया 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 रोज चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत नव यौवनम, यहां पर वही नया आस्वादन, जितना गहराई में इन विषयों में हम जाते हैं उतना नव आस्वादन करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक स्थान पर जब प्रवचन दे रहे हैं तो एक नशे में धुत व्यक्ति प्रवेश करता है, और नशे में धुत करता है प्रवेश तो सब लोग डर जाते हैं क्या करेगा, और प्रभुपाद के पास बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और एक टिश्यू पेपर का रोल प्रभुपाद को उपहार में देता है। तो प्रभुपाद प्रशंसा कहते हैं सी ही ऑल्सो हैज अ सर्विस एटीट्यूड एंड ही सर्विंग कृष्णा, हिल बी बेनिफिटेड, इसको लाभ होगा। लेकिन उसी प्रवचन को सुने तो उस प्रवचन में प्रभुपाद 100% शरणागति की बात भी करते हैं, तो एक तरफ वो प्रशंसा भी कर रहे हैं छोटी सेवा की जो भी की गई है किसी के द्वारा अज्ञानता में, दूसरी तरफ पूर्ण शरणागति भी मांगते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी सिर्फ हमारी सेवा की प्रशंसा ही नहीं, हमसे 100% शरणागति भी मांग रहे हैं। तो एक भक्त और एक वैष्णव का मतलब है वो सिर्फ अपनी सेवा और अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं रहता, वो 100% कृष्ण को देना चाहता है। जिस प्रकार से 1977 में जब श्रीला प्रभुपाद जी अपनी भौमलीला समाप्त कर रहे थे और ये विदित हो गया था कि अब प्रभुपाद बहुत कम है हमारे बीच में, तो भूरीजन प्रभु सोच रहे थे कि अब कम अवसर है प्रभुपाद की सेवा करने का, तो वो $1,000 भेजते हैं प्रभुपाद की सेवा के लिए हांगकांग। फिर उनके पास समाचार आता है कि अब प्रभुपाद का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है, तो जितना भी उनके पास संपत्ति था उसका आधा प्रभुपाद की सेवा में फिर भेज देते हैं। फिर समाचार आता है कि अब बहुत ही कम समय है, तो जितना बचा था वो भी प्रभुपाद की सेवा में भेज देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता था कि ये आखिरी क्षण है प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, फिर अवसर नहीं मिलेगा प्रभुपाद की सेवा का। तो हालांकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो 100% कृष्ण को देना चाहता है, इसे वास्तव में वैष्णव भक्त कहा जा सकता है। जिस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं, और प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि पूरी तरह से भक्ति में लगे रहने से ही कृष्ण का साक्षात्कार किया जा सकता है, अन्यथा इस बद्ध जीवन में ये संभव नहीं कि कृष्ण जो कि गुणातीत हैं, 3 गुणों से परे हैं, हम उनके संपर्क में आ पाए। ये परम सौभाग्य है हम सबका कि ना चाहते हुए भी, हम चाहते तो नहीं थे, बहुत कम देखने में आता है कि कृष्ण को ढूंढता हुआ कोई इस्कॉन में आया हो कि कृष्ण है यहां पे उनको जानना चाहता हूं, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अधिकतर लोग कृष्ण को ढूंढते हुए नहीं आए, है ना। लेकिन ये भक्तों की बड़ी विशेष कृपा है, प्रभुपाद जी ने एक ऐसा ये आंदोलन दिया है हमें। प्रभुपाद कहते हैं एक स्थान पे चैतन्य चरितामृत में कि अगर हम प्रगति नहीं भी करना चाहते कृष्ण भावनामृत में, तो चैतन्य महाप्रभु बालों से खींचते हुए हमें लेकर जाएंगे आगे, सिर्फ हम उनके चरणों में पड़े रहना स्वीकार कर लें, बस इतनी सी बात अगर स्वीकार करें तो चैतन्य महाप्रभु बालों से, वो कहते हैं स्पष्ट रूप से, महाप्रभु विल ड्रैग यू टू द सक्सेस, चैतन्य महाप्रभु खींचते हुए ले जाएंगे आपको सफलता की ओर। और वही प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें संदेश प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यही विराम दूंगा, आपका बहुत धन्यवाद धैर्य की परीक्षा देने के लिए। कोई टिप्पणी है तो, बहुत से वैष्णव बैठे हैं, इस पे बहुत चीजें बोली जा सकते हैं, तो कृपया करके आप सब मेरे शुद्धिकरण के लिए कह सकते हैं। हरे कृष्ण।